आज ख्याल है कि हम तस्वीर कायनात के सिलसिले में कुछ बातचीत करें। गो की क्लास कुरानी तालीम के सिलसिले में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा ये मौजू भी कुरान से बाहर नहीं है, क्योंकि कुरान मुकद्दस में तस्वीर कायनात से मुतालिक बहुत सी आयात वारिद हुई हैं। और वैसे भी तस्वीर कायनात आजकल का मौजू है जिसके मुतालिक साइंसी नुक्ते निगाह से भी कुछ अहम बातें सामने आ सकती हैं और कुछ मसाइल हल हो सकते हैं। चुनांचे तस्वीर कायनात एक ऐसा मौजू है जो कि न सिर्फ रूहानी और मजहबी तौर पर इसकी अहमियत है, बल्कि साथ ही साथ मैदी और साइंसी लिहाज से भी इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और हकीकत में देखा जाए तो तस्वीरी कायनात का मौजू बड़ा दिलचस्प और बहुत ही मुफीद भी है। आपको कुरान हकीम में ऐसी बहुत सी आयतें मिलेंगी जिनसे ये अख्द किया जा सकेगा कि खुदा की खुदाई में, खुदा की बादशाही में जो कुछ भी है वो इंसान ही के लिए है। खुदावंद आलम ने अपनी कुदरत से हर हर चीज इंसान ही के लिए बनाई है, क्योंकि वो जात हर चीज से बेनियाज है, उसे किसी चीज की कोई हाजत नहीं। वो गनी है, वो समद है, उसकी हकीकत हमेशा से एक जैसी है और उस हकीकत में कोई कमी नहीं। उसमें ना तो कोई कमी वाका हो सकती है न कोई बेशी। वो हमेशा से एक हाल में कायम है, लिहाजा उसके लिए किसी भी शय की हाजत नहीं। और कायनात के जाहिर बातिन में जो कुछ मौजूद है, जो कुछ पैदा किया गया है और जो कुछ आइंदा वजूद में आने वाला है, वो सब सिर्फ इंसान ही के लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस की वाज़ह आयतों में ये तसव्वुर दिया है कि इंसान ने ज़बानी हाल से जो कुछ तलब किया था वो सब अल्लाह ने उसे दे रखा है। चुनांचे एक जगह इरशाद हुआ है कि वो अताकुम मिन कुल्लिन मा सअलतुमुहु, और अल्लाह ने वो सब कुछ तुम्हें दे रखा है जो तुमने उससे मांगा था। अब हम यहाँ खुदा से मांगने के बारे में थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि उससे मांगने के दो तरीके हैं। एक ये कि हम अपनी ज़बानी काल से, यानी इस बोलने वाली ज़बान से मांगते हैं, और दूसरा ये कि हम ज़बानी हाल से कोई शय तलब करते हैं। और ज़बानी हाल से किसी चीज़ के मांगने के मानी ये हैं कि अल्लाह ताला खुद हमारी हालत व कैफियत के पेश नज़र जो कुछ देना चाहिए वो दे देता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ की कद्र कीमत को समझकर مانگے, کیونکہ کیا معلوم کہ خدا کی خدائی میں کیا کیا نعمتیں موجود ہیں, ہم کو اس کا علم نہیں ہے. لہذا خدا کی رحمت کو چاہیے کہ وہ خود ہماری حالت اور ہماری محتاجی کو دیکھ کر وہ ساری چیزیں ہمیں عطا کریں جن کی ہمیں ضرورت ہے. لیکن ہاں, اس میں شرط فرمان برداری اور شرط انسانیت بھی ہے. اس کے یہ معنی ہوئے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائیں تو خداوند عالم وہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کرے گا جو اس کی خدائی میں موجود ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اس تفصیل کائنات کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کریں, اور وہ یہ کہ تفصیل کائنات کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ظاہری اور سائنسی ہے اور دوسرا پہلو باطنی اور روحانی ہے. چنانچہ اس سے انکار نہیں کہ سائنس بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ظاہری نعمت ہے, ایک انسانی صلاحیت ہے جس کے مطابق انسان ہمیشہ سے تفصیل کائنات کے سلسلے میں جدوجہد کرتے چلا آیا ہے. تاہم اس سے کوئی دانش مند انکار نہیں کر سکے گا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ روح اور روحانیت ہے. چنانچہ میرا اپنا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کے ذہن میں تشکیل کائنات سے متعلق نئے سے نئے خیالات آتے رہیں گے اور ان کو عملی شکل دینے کے لیے کوشش بھی جاری رہے گی, لیکن ایسی خواہشات کی تکمیل روحانی طور سے ہو سکتی ہے. اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس کی کوشش ایک طلب کی حیثیت سے ہے, ایک خواہش کے طور پر ہے, اور یہ روحانی طور سے پوری ہو سکتی ہے. اس مقام پر ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہمارے امام حی حاضر نے اب سے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس میں انسان ایک کپ چائے پینے کے لیے چاند کی دنیا میں چلا جائے گا. اب ہمیں اس مقام پر اچھی طرح سے سوچنا چاہیے, اس کا تصور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے سائنس کے اعتبار سے بھی اور روحانیت کے لحاظ سے بھی کہ امام کا اشارہ اس ارشاد میں کس چیز کی طرف زیادہ ہے, سائنس کی طرف یا روحانیت کی طرف. اگر کسی حال اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے, تاہم عقیدہ اور مذہب کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ روحانی طور پر ممکن ہے, اس لیے کہ اگر ہم اس معاملے میں صرف دنیاوی طور پر سوچیں تو یہ بات بہت ہی عجیب ہوگی کہ انسان صرف ایک کپ چائے پینے کے لیے سیارہ زمین سے چاند کی دنیا میں چلا جائے. اور ہمیں اس مقام پر سوچنا صحیح ہے, کیونکہ امام جو کچھ بھی ارشاد فرماتا ہے اس میں بہت سے بھید ہوا کرتے ہیں. لہذا ہمارا یہ تصور زیادہ صحیح ہے کہ انسان سیارہ زمین سے کسی دوسرے سیارے میں روحانی طاقت سے آسانی منتقل ہو جائے گا. اب اس مقام پر میں مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روحانیت میں آنے جانے کا سوال ہی نہیں, उसमें सिर्फ इरादा ही किया जाता है और इरादे ही से एक सैयारे से दूसरे सैयारे में जाया जा सकता है। जिस तरह मौजूदा वक्त में भी आप अगर चाहें तो खुद को इरादा और ख्याल ही के जरिए से दूर शहर में तो जा सकते हैं, या ये कि वो शहर और वो मकाम अपने जहन तसव्वुर में आनंद फानंद ला सकते हैं। दोनों बातें बराबर हैं। आप किसी दूर शहर में इरादे ही इरादे से पहुंच जाते हैं, या कि उस शहर को अपने दिल में लाते हैं। ये रूहानी सफर की एक उम्दा मिसाल है, क्योंकि रूह वसी है। एक ही इंसान की रूह पहले ही से कायनात के गोशा गोशा में मौजूद है, तो फिर रूहानी तौर पर हमें यहाँ से किसी सैयारे में मुंतकिल हो जाने की जरूरत ही क्या है, जबकि हम पहले ही से वहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ इतना है कि हम अपने इरादे को उस तरफ मबजूल करेंगे, अपने ख्याल को भेजेंगे, या कि तसव्वुर के वसीले से उस मकाम को अपने दिल दिमाग में लाएंगे। आजकल जो साइंस की तरक्की का उरूज है, ऐसी ऐसी बातों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था कि साइंस का इस तरह सोचना भी खुदा के हुजूर में एक तलब की हैसियत रखता है, एक डिमांड है, एक मुतालिबा है, जो आगे चलकर रूहानी तौर पर यह तलब मंजूर होगी। यानी वो साइंसदान अब रिजल्विंग सिस्टम से तस्वीर कायनात या कि फुला नवाजी या कि एक सैयारे से दूसरे सैयारे में पहुंचने के लिए सोच रहे हैं। वो रिजल्विंग सिस्टम क्या है, ये तो रिजल्विंग सिस्टम क्या है वो तो साइंस के काफ़ी मुताले के बाद बताया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमारे जहन में इस बारे में जो बात आई है वो ये कि इंसान किसी चीज़ को या इंसान के जहन को किसी दूर सैयारे में पैदा करे, वहाँ पर जो पहले से ईथर मौजूद है या जो रूह मौजूद है या जो कायनाती ताकतें मौजूद हैं, उनके वसीले से यहाँ से वहाँ कोई चीज़ ऐसी इस तरह से मुंतकिल कर दी जाए कि उस चीज़ को यहाँ से भेजने की ज़रूरत ही नहीं हो, बल्कि वही चीज़ वहाँ पैदा हो जाए। ये रूहानियत का एक तसव्वुर है और रूहानी तौर पर ये बात बहुत मुमकिन है। दूसरी बात जो अहम है वो ये है कि अब जो दुनिया वालों को ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं और वो जिन चीज़ों के लिए सोचते हैं वो मोमिनीन को आलम रूहानियत में खुद अज खुद हासिल हो जाएंगी। साइंस की दुनिया में जो सवाल पैदा हो जाते हैं या जिन चीज़ों के लिए सोचा जाता है, हाँ वो चीज़ें पूरी हो जाएं या अधूरी रहें, लेकिन खुदा के हुजूर में इंसानों की ये ख्वाहिश या ये कोशिश एक तलब और डिमांड की हैसियत से है, लिहाजा अल्लाह ताला पर ये वाजिब होता है कि वो अपने बंदों की इन ख्वाहिशात को रूहानियत की दुनिया में पूरी कर दें। और साथ ही साथ जमाने के गुजरने के साथ साथ इस दुनिया में भी ऐसी बहुत सी इंसान की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। कुरान मुकद्दस के अंदर बहिश्त के बारे में एक इरशाद आया है और वो इरशाद बड़ा अहम है और ऐसा है कि जन्नत के मुतालिक जितने भी सवाल किए जाएं उन सब के लिए उसमें जवाब मौजूद है। वो इरशाद ये है जो फरमाया जाता है कि उन जन्नतियों के लिए वहाँ पर हर वो चीज़ मौजूद है जिसे वो चाहते हैं। इसके मान ये हुए कि अगर एक मोमिन इस दुनिया में तस्खीर कायनात चाहता है तो आलम रूहानियत में जो भीष है इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ ये भी फरमाया गया है कि जो चीज़ें इनके ख्वाहिश से ज़्यादातर हैं वो भी भीषियों को अता कर दी जाएगी। यानी जैसा कि शुरू में कहा गया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंसान सब चीज़ों का इल्म रखे और फिर उनको चाहे और उनके बारे में ख्वाहिश करे, ये इंसान से नहीं हो सकता है क्योंकि उसके इल्म में नहीं है कि खुदा की खुदाई में क्या क्या नामतें हैं। इसलिए खुदा ने ये फरमाया कि इंसान जिन चीज़ों के बारे में इल्म रखता है वो भी उसको अता कर दी जाएंगी और जो चीज़ें वो नहीं समझता है उनका इल्म अब तक इसको नहीं हुआ है तो वो चीज़ें भी इंसान को मोमिन को अता कर दी जाएंगी। यहाँ पर एक और अहम बात बताएं जो अक्सर पूछा जाता है वो ये कि अगर एक इंसान आलम रूहानियत में जाने के बाद दुनिया में आना चाहता है तो क्या इस दुनिया के मुताबिक अल्लाह उसकी ख्वाहिश को पूरी करेगा। इस इर्शाद से जवाब मिलता है कि हाँ उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी कि वो दुनिया में आ सकेगा। दूसरा सवाल, क्या ये मुमकिन है कि इंसान बहिश्त में जो हर चीज़ के चाहने की जगह है ये चाहे कि वो वहाँ भी रहे यहाँ भी आए। जवाब मिलता है कि हाँ ये भी मुमकिन है क्योंकि इंसान आज एक नुक्ता और एक ज़रा जैसा नज़र आता है लेकिन कल जब आलम रूहानियत में खुद को पाएगा तो उस वक्त उस पर जाहिर होगा कि वो बसीत है यानी हर जगह पर है। इसलिए क्या मुश्किल है कि जब ये कुल से वाबस्ता हो जाएगा, इसकी अना कुल से मिलेगी और एक कुली अना करार पाएगी तो उस वक्त ये खुद को एक वक्त दुनिया में भी और आखिरत में भी पाएगा। इसकी मिसाल हम इमाम जवान से ले सकते हैं क्योंकि वो तकमीली इंसानियत का नमूना है यानी इंसानी कामिल है और दुनियाई इंसानियत का वो आला मकाम है जो सबसे आखिर में मिलता है। तो हम देखते हैं और तसव्वुर करते हैं कि इमाम भैया को आलमी जिस्मानियत में भी है और आलमी रूहानियत में भी है। हम कह सकते हैं कि वो कुल कायनात पर बसीत और मुहीत है यानी जिस्म के एतबार से वो दुनियाई जाहिर में है और रूह की उस अतू के लिहाज से आखरत और बहिश में है क्योंकि इस्माइली तालीमात के मुताबिक दुनिया और आखरत एक साथ है। दुनिया जिस्म है और आखरत रूह। इसी तरह तस्खीर कायनात के तस्वुर के सिलसिले में आदि बरहक ये वजूद मुबारक से हम मिसाल ले सकते हैं। वो ये कि तमाम अपने नूर के वसीले से कुल कायनात पर मुहीत और हावी है तो ये हुई रूहानी तौर पर तस्खीर कायनात का एक तस्वुर। नेज उस आयत की तशरीह जिसमें कहा गया है कि तुमको बहिश्त में हर चीज़ अता कर दी जाए और अगर हम इस हकीकत को तस्लीम करें कि जुज कुल के साथ मिल जाता है तो उस वक्त तस्खीर कायनात का जो तस्वुर है उसके मुताबिक अमल होगा। ये है तस्खीर कायनात की एक वजाहत के असल में तस्खीर रूहानी तौर से
सही है। इसके बावजूद हम साइंस की कोशिशों से इनकार नहीं करते हैं कि वो एक अच्छी मिसाल है और उसमें इंसान को मजहबी तौर पर सोचने के लिए मौका मिलता है और ये सबक मिलता है कि किस तरह नामुमकिन चीज़ें मुमकिन हो जाती हैं। इससे मेरी मुराद है कि ज़माने कदीम में जो चीज़ें नामुमकिन करा दी गई थी वो अब या कि उनमें से बहुत सी चीज़ें साइंस की बदौलत मुमकिन हुई हैं। ये एक मिसाल है इस वाक़ के लिए कि रूहानी तौर पर इससे ज़्यादा मुमकिन है कि हर चीज़ मुसखर हो और हर नामुमकिन मुमकिन हो जाए। कुरान में एक और इरशाद है जिसमें फरमाया गया है कि हम अनकरीब इस ज़ाहिरी कायनात में अपनी निशानियां बताएंगे और उनके नुफूस में भी ऐसी निशानियां बताते रहेंगे यहां तक कि वो समझ पाएं कि अल्लाह बरहक। ये पेशगोई उस वक्त की है जबकि कुरान नाजिल हो रहा था और पेशगोई के तौर पर फरमाया गया था कि आने वाले ज़माने में हम ज़ाहिरी और कायनाती तौर पर बहुत सी निशानियां बताएंगे। इससे साइंस की वो सारी तरक्की मुराद हैं जो अब तक हो चुकी है, इसके बाद रूहानी तरक्की की तरफ इशारा किया गया है और जिसमें फरमाया गया है कि अल्लाह इंसानों के नुकूस में यानी बातिन में ऐसी निशानियां बताएंगे जो अब तक बिरूनी तौर पर थी और उसे कहीं बढ़कर। यानी इस आयत में फरमाया गया है कि अल्लाह की निशानियां दो किस्म की हैं, एक तो जाहिर में है और इंसान के नफ्स में इंसान के नफूस में। जाहिरी निशानियां मादे किस्म की होती हैं और बातिनी निशानियां रूहानी नौयत की। इस मतलब की मजीद वजाहत करूंगा और वो ये कि एक वक्त आने वाला है जिसमें कि इंसान के दिल दिमाग में वो सब कुछ पैदा होगा जो कुछ अब साइंसी तौर पर सामने है। यानी ये रेडियो, ये टेलीविज़न, ये टेलीफोन, ये वायरलेस, ये दूरबीन और ये सब कुछ इंसान के जहन के अंदर पैदा हो जाएगा और जिसकी बदौलत इंसान रूहानी तौर पर कायनात को तस्दीक कर लेगा। अब मैं इससे बढ़कर एक देर इस सिलसिले में बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब मोमिन इबादत बंदगी करता है और रूहानी तौर पर आगे से आगे बढ़ता है और आगे से आगे बढ़ते हुए चला जाता है तो एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें कि सारी कायनात का खुलासा यानी सारी कायनात की रूहें जर्रात यानी एटम की शक्ल में मोमिन के अंदर दाखिल हो जाती हैं। तमाम अशिया की रूहें, हर चीज की रूह, तमाम सैयारों, सितारों और पूरी कायनात की अरवा मुर्दों की भी, जिंदों की भी, ये तस्वीर कायनात। अब उस वक्त जिंदगी कायनात से क्या ताल्लुक है? कायनात तो मुसखर हो गई, तस्वीर और मुसखर ताबे होने को कहते हैं। जरा इस लफ्ज के मानी में सोचा जाए इस बेहतर तस्वीर और क्या हो कि सारी कायनात इंसान के अंदर समा जाती है। मौला अली ने अपने दीवान में इरशाद फरमाया है कि तू गुमान करता है कि तू एक छोटा सा जिस्म है और हालांकि तुम्हारे अंदर सारी कायनात सम हो गई है। हम इस मालूम को ऐसे ही तस्वुरात दिए गए हैं और एक ये कि वकुल शय नासाय ना होगी नामी होगी। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तमाम चीज़ों को इमाम के नूर में उसकी रूहानियत में महदूद कर रखी है, गैर कर रखी है, समो दी है। अब अगर एक मोमिन امام سے واصل ہو جاتا ہے اپنی ہی مقام پر، یا امام اس میں آتا ہے، یا یہ امام میں جاتا ہے، یا امام کا دیدار ہوتا ہے، امام میں فنا ہو جاتا ہے، امام کا نور آتا ہے، یا امام کا اسم اعظم اس کو ملتا ہے اور اس کی شرطوں کو یہ پوری کرتا ہے، تو کیا اس وقت اس آیت کے مطابق یہ تشکیل کائنات نہیں کر سکے گا؟ کائنات تو مسخر نہیں کر سکے گا، یا وہ نور جس میں سب کچھ ہے ساری کائنات کو لے کے نہیں آئے گا؟ یہ تشکیل کائنات یہ دوسری وضاحت ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کو بتلاتا ہوں، قرآن ہے کہ تم دوڑ کرو، مقابلہ کرو، مقابلہ کرو، نیکی میں، بلائی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کرو، اور اس جنت کو حاصل کرو جو کہ کائنات کے برابر ہے، جس کا طول و عرض کائنات کے برابر ہے۔ جب کوئی دانشمند اس میں ذرا سوچتا ہے، وہ سمجھ پاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی نام ہے کائنات کے باطن کا،